नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के इस 20 मार्च के रविवार के श्रीमद् भागवतम प्रवचन में आप सबका स्वागत है पंजाबी बाल मंदिर में। हरे कृष्णा। तो आज फाल्गुन शुद्ध द्वादशी है, कल फाल्गुन शुद्ध एकादशी थी जिसको ब्रज में रंग भरनी एकादशी कहते हैं। रंगभरणी एकादशी के दिन श्री वृंदावन में होली होती और फाल्गुन की बनानी भी बरसाने में रंगीली होली होती। और फाल्गुन की दशमी में वृंदावन में होली होती एकादशी में वृंदावन में कलर जब निकल गए थे वृंदावन में तो मेरे ख्याल से हजारों और लाखों लोग वृंदावन की परिक्रमा करते, कुछ लोग मथुरा और वृंदावन के साथ में परिक्रमा करते। वृंदावन की परिक्रमा का महत्व होता है कि वृंदावन की परिक्रमा करने से जन्म जन्मांतर के पाप मुक्त हो जाते हैं और श्री कृष्ण भगवान के चरणों में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसे शास्त्रों में कम से कम 20 से 25 जगह पर लिखा गया अलग अलग शास्त्रों में। आज द्वादशी है और आज कल से श्री गोवर्धन में फाल्गुन महीने की जोरदार गिरिराज परिक्रमाएं लगाई जा रही है। ऐसा सुंदर आनंद में वातावरण, सब जगह पर लोग खुशियां मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान का राजा रानी का नाम पुकार रहे हैं। तो सुंदर वातावरण में हमें भी इस ब्रज के महोत्सव में अपने आप को जोड़ना चाहिए मन से। तो आज कल आज फिर कल परसों और गौर पूर्णिमा का दिन तक गुजरात की परिक्रमा करेंगे। फिर 23 तारीख को गौर पूर्णिमा का उत्सव है हमारे संप्रदाय में और ब्रज में धूलि वंदन का उत्सव है, उसमें ब्रज के रूप का वंदन किया जाता है। फिर 24 और 25 तारीख को फिर रंग का उत्सव होगा। 23 को धूलिवंदन, 22 तारीख को रात को होली होलिका दहन और 24 को फिर रंग और 25 को बहुत ही मशहूर बलदेव जी का होरंगा उत्सव मनाया जाएगा। होरंगा मतलब जब कृष्ण भगवान के वृंदावन में और बलदेव जी के धाम में जब होली होती है उसको होरंगा जाए। 25 तारीख में विश्व प्रसिद्ध प्राचीन उत्सव बलदेव जी यानी दाऊजी महाराज जो है वो गोकुल के आगे जाकर उनका 10 किलोमीटर आगे दक्षिण दिशा में ब्रज के दाऊजी का स्थान है। वहां पर जब बलराम जी द्वारका से वृंदावन आए थे तो 100,000 गायों का दूध निकालकर एक कुंड में उसको स्टोर किया गया, उसका नाम क्षीर सागर है। वहां पर जो इस ब्रह्मांड का जो वैकुंठ है वो क्षीर सागर में श्री सारे विष्णु जो है वो विराजमान है। तो उस जगह पर फिर उस दूध से बलराम जी का अभिषेक किया गया था स्वागत के रूप में। तो बलराम जी का चरणामृत भी है क्षीर सागर, वहीं पर बलराम जी का बहुत सुंदर विग्रह है 6 फुट 6 इंच आदमी प्रवृत्ति भी करी। गौरंग महापुर में प्रकाशित किया सब जगह, ब्रजधाम को प्रकट किया, ब्रजधाम में राधा रानी का गौरव प्रकट किया, स्वयं राधा रानी का भाव लेकर आए, इस तरह से ये इतिहास है। तो माधवेंद्र पुरी जी का सबसे बड़ा जो योगदान है वो राधा रानी के तत्व को हमारे लिए प्रस्तुत करना है। माधवेंद्र पुरी वैसे जैसे हर एक व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल गदाधर पंडित राधा रानी है, चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण राधा रानी के भाव में है, अद्वैत आचार्य महाविष्णु है, वैसे माधवेंद्र पुरी गौलोक धाम के एक कल्प वृक्ष है और उन्होंने भगवान की इच्छा से यहां पर अवतार लिया और बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की। हम सब लोग जानते हैं कि माधवेंद्र पुरी जी आज तक तिरुभाव दिन है, तो तिरुभाव के समय पर वो बहुत ही उत्कट भाव से कृष्ण राधा रानी को पुकार रहे थे और ईश्वरपुरी जी उनकी बहुत ही साधारण सेवा, यानी कि उनके बलमूत्र को निकालना, उनको स्वच्छ करना, उनके शरीर की देखभाल कर रहे थे, बहुत ही उत्कट सेवा कर रहे थे। तो इस तरह से भगवान को पुकारते हुए, याद करते हुए उन्होंने शरीर त्याग दिया। आज के दिन उनका राधा कुंड के पास में एक भजन मूर्ति भी है, उनका राधा कुंड के पास आप जाएंगे तो उधर रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा बनाया गया जिह्वा मंदिर है, गोवर्धन की जिह्वा का स्थापना किया गया, उसके आगे जाकर एक कुआं है, गोपी कुआं, उस गोपी कुआं के सामने माधवेंद्र पुरी जी की बैठक है, वहां पर उन्होंने भजन किया राधा कुंड के बारे में। और सब लोगों को पता है वो फेमस कहानी जो है माधवेंद्र पुरी जी के जीवन की, कि माधवेंद्र पुरी जी वृंदावन आए और वृंदावन आए, उन्होंने वृंदावन का परिक्रमा किया, गोवर्धन गए और यहां पर भगवान का अभिषेक किया गया था गोविंद कुंड, जो जल एकत्र हुआ भगवान के चरणामृत के रूप में, सूर्य के दूध के रूप में, उस जगह पर बैठ कर वो ध्यान कर रहे थे। तो वहां पर एक बालक आता है, वो तो भिक्षा भी नहीं करते थे, इतने विरक्त थे कि जो मिलेगा वो खाते थे, बाकी नहीं खाते थे, ऐसे ही बैठे थे, कई दिन का व्रत कर रहे थे, कोई भोजन नहीं कर रहे थे। तो एक बालक वहां पर आया और एक पात्र में दूध लेकर आया और मैंने कहा कि महाराज जी, हमने सुना है यहाँ की औरतों से जो कपड़े धोते हैं यहाँ पर आके, कि आप लोग कई दिन से, आप कई दिन से यहाँ पर बैठे हैं, आपने कोई भोजन नहीं किया है, कुछ आप खा नहीं रहे। हमारे गाँव में, मेरे गाँव में ये नियम है कि मेरे गाँव में कोई भी भूखा नहीं रहता और जो भिक्षा करके खाता है उनको भी प्राप्त हो जाता है, जो बना के खाते हैं उनको भी हम देते हैं और जो कुछ नहीं करते हैं उनको मैं स्वयं जाकर देता हूं, इसलिए मैं आपको ये दूध देने के लिए आया हूं, हमारे गांव में कोई भूखा नहीं रहता, आप वो दूध को ले लेंगे। तो माधवेंद्र पुरी ने बालक ने कहा कि बाद में आऊंगा पात्र देने के लिए। माधवेंद्र पुरी ने बालक को देखते हुए उस दूध को फिर प्रसन्न किया और उनको इतना दिव्य अनुभव हुआ, उनके रोमांच खड़े हो गए, आंखों से अश्रु आ गए, उनको समझ में आया कि दिव्य बात है। तो पूछते हैं कि बालक कौन है, बालक कौन है, ढूंढते रहे, पूछते रहे, लेकिन बालक कहीं भी नहीं मिला। फिर वो पूछते रहे क्या करना चाहिए, तो जब सो गए तो उनको स्वप्न आया और स्वप्न में वही बालक दोबारा प्रकट हो गया। उन्होंने कहा मैं गोपाल हूं, तुम जिसको पूछते हो वो ही मैं गोपाल हूं और मैं इस गोवर्धन के शिलाओं के बीच में हूं, बहुत गर्म लग रहा है मुझे, आप मुझे इस शिलाओं से निकालो और गिरिराज के ऊपर प्रस्थापित करो। माधवेंद्र पुरी धन्य हो गए, तो समझ गए अरे मैं तो भगवान को पहचान नहीं पाया, साक्षात भगवान मेरे सामने दर्शन दिए और मुझे दूध देकर चले गए, दिव्य दूध का आस्वादन दिया, इतना भाग्यशाली हूं। तो फिर तुरंत ब्रजवासियों को लेकर उन्होंने उत्खनन किया कोमलता से और श्री गोपाल जी का विग्रह प्रकट हो गया, जो गोपाल जी का दर्शन उन्होंने उत्खनन किया। फिर उनकी इच्छा के अनुसार माधवेंद्र पुरी जी ने गोपाल जी को स्थापन किया गिरिराज के ऊपर। आज भी वो जतिपुरा गांव में ऐसा हुआ था, जतिपुरा गांव में उनका प्राप्ति हुई थी और जतिपुरा गांव में ही गिरिराज के ऊपर यहां मुखारविंद है, उसके ऊपर उनका मंदिर है, छठे बैंक आप परिक्रमा जाएंगे ताकि गोपाल जी का मंदिर मिले। तो फिर उन्होंने गोपाल जी को स्थापन करते ही अन्नकूट महोत्सव स्थापित किया, बहुत दिव्य अन्नकूट महोत्सव हुआ, गोपाल जी को छप्पन भोग पर्वतों के रूप में दिया गया और उसके बाद में ऐसा लिखा आता, वर्णन आता है कि साल भर हर एक गांव ने अन्नकूट उत्सव किया, इतनी लंबी लाइन थी उसमें, एक साल में एक का गांव का भी रिपीट नहीं हुआ। इतने गांव के लोगों ने हमें करना उत्साह से गोपाल जी को अपने अपने गांवों की तरफ से पहाड़ों के रूप में अन्नकूट अर्पण किया। इतना उत्साह था लोगों की तरफ से। आज ब्रज में भी सब लोग यहां वहां फंसे हुए हैं यार, किसी को ध्यान नहीं इस चीज पर। आज कभी भी हमको गोवर्धन में, गोवर्धन के सामने अन्नकूट का भव्य उत्सव दिखाई नहीं पड़ता, बहुत रेयर नहीं पड़ता। उस साल हर दिन 360 दिन हर दिन एक एक गांव की तरफ से भव्य दिव्य सत्सन भोग अन्नकूट का आयोजन किया। फिर दोबारा गोपाल जी सपने में आए माधवेंद्रपुर जी के। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत साल जमीन के अंदर का पत्थर के नीचे था, मुझे बहुत कुष्ठता का अनुभव हो रहा है, आप कृपा करके मलय गिरी पर जाकर चंदन का अंतम इंतजाम करना और मुझे आकर अर्पण करना उसकी पेस्ट, उसका लेप लगाना, तो मैं शांत हो जाऊंगा। तो उनको गोपाल जी के छोड़े जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन हमने क्या पढ़ा था, गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्ते थे कोरिया। एक भक्त के लिए आनंद है कि भगवान के साथ रहे, भगवान के संबंध में रहे, भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करें, उनके अंग संग की सेवा करें, अंग संग करें। लेकिन जब आदेश ऐसा होता है भगवान या गुरु की ओर से कि आपको दूर जाना है उनसे और कुछ काम करना है, तो वो आदेश को अधिक ज्यादा मानते हैं और पसंद करते हैं, क्योंकि गुरु जी का से आज्ञा जो होती है उसी में श्री कृष्ण निवास करते हैं, उसी में श्री वृंदावन है। अगर आपको वृंदावन का अनुभूति करनी है तो आपको गुरु जी का आज्ञा एकाग्र मन से पालन करना होगा, तो उसी आज्ञा को पालन करने की विधि में आपको श्री वृंदावन का अनुभूति होगी और श्री गुरुदेव और उनका भी अनुभूति होगी उपस्थिति की। आप गुरु जी से दूर नहीं अपने आप को महसूस करेंगे और उसी में आपको कृष्ण की भी अनुभूति होगी, श्री वृंदावन की भी अनुभूति होगी। ये हमारे भक्ति मार्ग का एक सर्वसाधारण सत्य है। किसी भी संप्रदाय में जाएंगे तो गुरु जी की आज्ञा जहां है, जिस देश में आपको पूरी करनी है, वही देश आपके लिए वृंदावन है, वहीं पर श्री कृष्ण और राधा रानी आपके लिए विराजमान है। सभी आचार्यों ने इसको अनुभव किया। तो फिर वो गोपाल जी का प्रत्यक्ष सेवा छोड़कर चले जाते हैं और बहुत दिन के बाद में बहुत सारा चंदन इकट्ठा करते हैं। तो जब आने का समय होता है तो वो रेमुना में होते हैं, रेमुना में। तो रेमुना में भगवान दोबारा स्वप्न में आते हैं, कहते हैं रेमुना में जो गोपीनाथ जी हैं वो और मैं अलग नहीं हूं, तो आप वो चंदन का लेप बनाकर मुझे वही लगा देना, तो यहां पर मैं स्वीकार करूंगा और मुझे ठंडक का अनुभव होगा। तो इस तरह से उधर ही माधवेंद्रपुरी जी ने वो सारा लेप गोपीनाथ पे लगाया। आज भी वो गोपीनाथ जी स्वर गोपीनाथ के रूप में प्रसिद्ध है। वो लीला भी उनकी है ना, वो माधवेंद्रपुरी के लिए हुआ ना वो लीला। माधवेंद्रपुरी जी जानते थे कि इस मंदिर में खीर बहुत प्रसिद्ध है, इतनी प्रसिद्ध है कि लोग दूर दूर से खीर खाने को आते थे प्रसाद के रूप में। तो उनको लगा कि अरे मेरे गोपाल जी के लिए मैं बनाऊंगा ऐसे खीर, देखता हूं एक बार चक्के, फिर पता चलेगा क्या कैसे कैसे बनाया, क्या क्या उसके अंदर है, तो मैं चखना चाहता हूं उसको। तो पुजारी ने कहा कि भोग लेना बाकी है, अभी थोड़ी देर रुकी प्रसाद मिलेगा आपको। तो माधवेंद्रपुरी को बहुत दुख हुआ कि अरे मैंने भगवान के भोग लगाने के पहले ही खाने की इच्छा की, हालांकि उनके लिए ही की उन्होंने, उनका भाव तो ये था कि मैं देखूंगा फिर मेरे गोपाल जी के लिए बनाऊंगा, लेकिन फिर भी भगवान के भोग लगने के पहले ही उसको खाने की इच्छा की, तो बहुत दुखी हो गए, अपने आप को बड़ा पति मानने लगे और दूर चले गए एकदम दूर, और एक पेड़ के नीचे बैठकर पश्चाताप करने लगे कि मैं इतना पापी हूं, इतना भोगी हूं, हाँ भगवान को भोग देने के पहले ही मैं उसका आस्वादन करना चाहता हूं, इतना पतित जीवन है मेरा। उतने में वहां भोग लग गया भगवान को, गोपीनाथ जी को, तो 11 पात्र में भोग लगाया उन्होंने, हाँ मट्टी के पात्र में उस खीर का, और दरवाजा बंद कर दिया। तो गोपीनाथ जी ने बंद दरवाजे में, जब पर्दा बंद है, पट बंद है, तो एक खीर का पात्र जो है उठाया और अपने पैर के पीछे छुपाया। तो पुजारी जी आए, उन्होंने घंटी बजाया, टाइम हो गया पात्र उठाने का, पात्र उठाए तो हर रोज गिनते हैं अंदर कौन है, अंदर क्यों गिने बार बार उसको, तो जब भी पात्र थे उसको उठाया और रख दिया अंदर। रात को ये उपवास कर रहे हैं जहां पर भी बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने आप को अपराधी माना और कुछ ग्रहण नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बैठकर रो रहे हैं और भगवान को बता रहे हैं। फिर आपको पुजारी को भगवान ने सपने दिया, ये मेरे प्रिय भक्त मैंने एक पात्र खीर का मेरे पैरों के पीछे छुपाया है जो आपको ध्यान में नहीं आया, देख लो आप गिन लो, और आप मेरे पीछे जो मैंने वो पात्र जो है मेरे प्रिय भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए छुपा के रखा है, तो मेरी इच्छा है कि आप उन माधवेंद्रपुरी को ढूंढकर ये पात्र उन तक पहुंचा दो। एकदम हाथ में जग गए बिल्कुल भगवान के आदर के अंदर, तुरंत देखा जाके मंदिर के पीछे भगवान के विग्रह के पीछे पूरा खीर का पात्र छुपा के रखा है। उस दिन से वो गोपीनाथ जी खीर चोर गोपीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। भगवान जो है ना वो मूर्ति नहीं है, प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात प्रजेंद्र नंदन, भगवान कोई चित्रपट या कोई तेल का चित्रपट या कोई पत्थर का या कोई मट्टी का या लकड़ी का विग्रह नहीं है, साक्षात परब्रह्म है, साक्षात व्यक्ति है। हा? और जो भक्त जो सिद्ध हृदय होते हैं उनके साथ वो आदान प्रदान करते हैं। आप देखिए हमारे संप्रदाय के भी इतिहास में और बाकी संप्रदाय के इतिहास में भी भगवान हमेशा अपने भक्तों से बात करते थे, सनातन गोस्वामी से, रूप गोस्वामी से, वल्लभाचार्य से और पुरुषोत्तम चौबे से, कितने लोगों से भगवान ने, लोकनाथ गोस्वामी से, राधा विनोद जी ने बात किया है। ऐसे गोद में आगे बोले कि आज हम आज से माफ के हाथ रहेंगे, तो लोकनाथ जी ने कहा मैं तो फकीर आदमी हूं, मैं तो क्या भिक्षा मांग के खाता हूं, कभी नहीं खाता हूं, मैं कैसे पालूंगा, मैं कोई बात नहीं आप जो भी खाओगे जब भी खाओगे मुझे देना मैं खाऊंगा, लेकिन मुझे आपके साथ चलो। तो गले में झोली बनाया, राधा विनोद जी को रखा और सब जगह आश्रमों से सींचते हुए उसको घूमते रहे। सभी विद्रोह ने अपने अपने आचार्यों से बात किया, वल्लभाचार्य से गोपाल जी ने बात की। तो ये हमारे जीवन का एक साधन है, जब हम शुद्ध हृदय से भगवान की सेवा करते हैं तो विग्रह भी आपसे संपर्क करते हैं। और अगर आप इतने हम लोग इतने अगर प्रगत भक्त नहीं है फिर भी अगर सच्चे दिल से प्रामाणिकता से सरल हृदय से अगर भगवान की सेवा करते हैं तो जो विग्रह आपसे बोलते नहीं है वो भी आपको एक प्रकार का दिव्य आदान प्रदान करेंगे, जो आपको समझ में आएगा कि आज नाराज हैं आज खुश हैं। कई लोगों को ऐसे हमारे एक गुरु भाई गुरु बहन है, उनके घर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का विग्रह है, तो वो एक दिन रात को पानी रखना भूल गई। अभी घर की बात है, ये स्थापित विग्रह भी नहीं है, छह पूजा वाला और छह आरती वाला भी नहीं है, घर का विग्रह है। तो रात को सपने में आया और जगन्नाथ जी ने बहुत डांटा उनको, बिना जल लगाए सो जाते जो प्यास लग रही है। तो वो उठ के भाग गई, देखा तो रात को उस दिन वो जल रखना भूल गई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान शायद आपको मूर्ति से बाहर आकर प्रत्यक्ष रूप में आपसे संवाद नहीं भी करेंगे, फिर भी वो आपके साथ में प्रेम का आदान प्रदान करते रहते हैं जब तक आपका हृदय शुद्ध है और उनके साथ में आप व्यक्तिगत रूप में उनकी सेवा करते हैं। इस प्रकार से वो पुजारी बहुत प्रभावित हो गया कि कौन है वो भक्त जिसके लिए साक्षात गोपीनाथ जी ने एक पात्र खीर का छुपा कर रखा है। तो बड़ा वो एकदम एक्साइट हो गया, वो पात्र लेके वो पूरे गांव में भाग रहा है, माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी कौन है माधवेंद्रपुरी, कहां हो तुम, तुम्हारे लिए गोपीनाथ जी ने खीर का पात्र चुराया है, कहां हो ये महान भक्त, तुम कहां हो। तो कहीं भी गांव में नहीं मिले, गांव के बाहर चले गए तो एक पेड़ नीचे बैठकर रो रहे, यहां भी माधवेंद्रपुरी हो वही वो देवागी आदमी तो भाकुर जी को भोग लगाने पहले उसका खाने का इच्छा किया नहीं, वही पतित जी हूं मैं, अब क्यों ऐसे बोल रहे कि मैं महान भक्त हूं, नहीं नहीं गोपीनाथ जी ने आपके लिए पूरा खीर का पात्र छुपा के रखा था, ये लीजिए आप पाइए उसको। उनकी आंखों में अक्षर है, भगवान कितने दयालु हैं, उन्होंने पूरा खीर जो है बड़े प्रेम से आंखों से अश्रु रोमांच होते हुए गदगद होते हुए उसको पाया उन्होंने, और बाद में वो जो मट्टी का पात्र है उसको भी पाया धीरे धीरे। तो ऐसे माधवेंद्रपुरी थे, सबसे विशेष भक्त थे, उनका कथा जो है वो ही उनकी विशेषता है। उनकी जो कथा जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुख से भक्तों को बताई, अनदर ग्रेट थिंग। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के शिष्य हैं और ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, और जिस प्रकार से इतना मतलब इनसिग्निफिकेंट वो तुच्छ सेवा उन्होंने अपने गुरु जी का किया, इतने भाव से किया है। अंतिम समय पर जब माधवेंद्रपुरी का प्रभाव हुआ तो पूरे समय पर ईश्वरपुरी उनके साथ में थे, उनका सेवा कर रहे थे। उसकी वजह से ही, उनके इस भाव की वजह से वो इतने योग्य आचार्य बने कि वो स्वयं भगवान ने उनसे दीक्षा लिया, उनकी योग्यता को सिद्ध करते हुए। हाउ क्वालिफाइड ही वॉज। तो ईश्वरपुरी के शिष्य माधवेंद्र चैतन्य महाप्रभु हुए, मतलब माधवेंद्रपुरी के वो शिष्य के शिष्य हैं, ग्रैंड डिसाइपल हैं, उनके दादा गुरु हैं। तो उन्होंने महाप्रभु चैतन्य ने स्वयं कृष्ण भगवान ने जब अवतार लिया चैतन्य महाप्रभु के रूप में, उन्होंने ये कथा भक्तों को बताई माधवेंद्रपुरी की। इतने महान थे वो माधवेंद्रपुरी, उनका जीवन तो बहुत प्रेरणादायी है कि कैसे वो विरक्त और शुद्ध भक्त के भगवान की। उनके शिष्य के निष्ठ पड़ेंगे आप तो हैरान हो जाएंगे, कौन कौन शिष्य है उनके? अद्वैत आचार्य परमानंदपुरी, ब्रह्मानंदपुरी, आप गिनते जाइए, महान महान भक्त चैतन्य महाप्रभु के समय थे वो सब माधवेंद्रपुरी के शिष्य। एक नित्यानंद प्रभु लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य हैं, बाकी सारे सीनियर डिवोटी जितने भी थे वो सब माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, इतने महान आचार्य थे। तो कैसे हुआ कि चैतन्य महाप्रभु, देखिए चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आने को तरस रहे थे, वो अपने मायापुर में उन्होंने दीक्षा लिया, सन्यास दीक्षा ग्रहण किया कंटक नगर में, कटक कटवा में, और वहां से नदी में, नदी को पार करते हुए फिर वो जगन्नाथपुरी चले गए, और जगन्नाथपुरी में कुछ दिन रहे, और वहां से फिर वो अपने भाई को खोजने के कारण से विश्व को हरिनाम संकीर्तन का दान देने के लिए दक्षिण भारत की यात्रा किया उन्होंने 6 साल तक। अपने भाई के स्वरूप को ढूंढने के कारण जगह जगह गए, उन्होंने हरिनाम संकीर्तन किया, 4 महीने वो श्रीरंगम में निवास किया उन्होंने चतुर्मास के रूप में। चतुर्मास का शुरू होने का समय है तो श्रीरंगम पहुंच गए श्री चैतन्य महाप्रभु, और चतुर्मास में फिर उन्होंने कहा हमको यही रहना है, तो वो वेंकट भट्ट के घर में रहने लगे। वेंकट भट्ट का घर जो है वो श्रीरंगम में है, और हमारा परम सौभाग्य रहा है कि हम उस घर में 4 दिन रहे हैं, उसी घर में जहां पर चैतन्य महाप्रभु रुके थे, वेंकट भट्ट का घर था, और जिसमें वेंकट भट्ट के भाई प्रबुदानंद सरस्वती, वेंकट भट्ट स्वयं लक्ष्मी नारायण के भक्त थे वो श्रीरंगम भगवान के, और छोटा गोपाल जो बाद में जाकर गोपाल भट्ट का स्वामी बने, ये 3 यजमान के रूप में और मेहमान के रूप में चैतन्य महाप्रभु, ये 4 दिन उस घर में, ये 4 जन इस घर में रात भर कृष्ण लीला करते थे, और चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट का थोड़ा थोड़ा मजाक भी उड़ाते थे कि आप तो लक्ष्मी नारायण के भक्त हो, आपकी लक्ष्मी ऐसे कैसे सकते, तो इतने आप बोलते लक्ष्मी इतनी पतिव्रता है, लेकिन जब भगवान ने बंसी बजाई तो छोड़ के आई कृष्ण को। तो कभी भी भगवान के चरण, वो तो पाद सेवनम इस नवधा विधि के उस विधि के आचार्य हैं वो, शी इज द एम्ब्लेम ऑफ पाद सेवनम, कभी भगवान के विष्णु के चरण छोड़ते नहीं, हमेशा उनके सेवा में। फिर कैसे हो सकता है ऐसे, भगवान ने उनको बजा के प्रश्न पूछा, ये इनका पत्र कहां चला गया? तो भगवान की बुदली बदी बंसी पट पे तो वैकुंठ छोड़कर वहां पर आई, तो पतिवत तो बंद हो गया ना उनका। तो भगवान ने फिर उसको एक्सप्लेन किया कि ये पतिव्रत तो भंग वगैरह नहीं होता है, वही लक्ष्मी जी, वही राधा रानी है, और वही भगवान है जो ऐश्वर्य भाव में विष्णु मंत्र उनकी सेवा लेते हैं, वही माधुरी भाव में कृष्ण मंत्र राधा रानी की सेवा लेते हैं। तो ये ऐसा बहुत ही दिव्य आदान प्रदान उस घर में हुआ। चैतन्य महाप्रभु दिन में दिन भर वो जो तिरुमंगल अलवार ने बनाया हुआ भव्य दिव्य मंदिर है श्रीरंगम का, इसमें 8 दरवाजे हैं, और इतना बड़ा शहर है, पूरा मंदिर पूरा शहर है, यकीन नहीं कर सकते। उसमें झूम झूम कर हर गली में मंदिर के वो झूम झूम कर हरिनाम संकीर्तन किया करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सभी श्रीरंगम वासियों को उन्होंने दिव्य आनंद दिया, आनंद से विभोर कर दिया उन्होंने। और फिर वहां से निकले हैं वो, फिर वहां से वो फिर उत्तर की दिशा में आए, फिर पंडरपुर गए हैं, और पंडरपुर में उनको पता चला कि
मेरे भाई विश्वरूप जो हैं वो यहाँ अंतर्धान हो गए हैं, उन्होंने सन्यास लिया और उनका नाम पड़ा शंकरारण्य गोस्वामी, और सन्यास के रूप में उन्होंने भ्रमण किया। आखिर में पंडरपुर में जहाँ पर विट्ठल देव का निवास है वहाँ पर आए और वहीं पर शरीर उन्होंने त्याग दिया, उसका भी उन्होंने दर्शन किया। फिर उसके बाद दोबारा वो जगन्नाथपुरी आए और वहां पर चैतन्य जब भी दोबारा आए तो उनको वृंदावन जाने की बहुत तीव्र लालसा रही कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। लेकिन पूरी के भक्त लोग इतने आसक्त थे भगवान से, वो उनका संग जो है वो क्षण भर भी छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का संग यानी दिव्य कृष्ण प्रेम का भाव, उनके साथ में जो भी रहते थे वो हमेशा कृष्ण प्रेम के सागर में झूलते रहते थे, उसकी लहरों में झूलते रहते थे। कितना वर्णन नरहरि चक्रवर्ती करते हैं अपने भक्ति रत्नाकर में कि जो जो ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु के संग में रहे वो हमेशा प्रेम के सागर के लहरों में ऊपर नीचे होते रहे, वो कभी उनको छोड़ने का दिल नहीं हुआ। हजारों लाखों लोग उनके आहुति इर्द गिर्द रह रहा करते थे हमेशा, तो छोड़ते नहीं थे। वो अभी मैं जा रहा हूं वृंदावन तो कहते अभी ढोले यात्रा हो रही है, अभी ढोले यात्रा मतलब अपना गौर पूर्णिमा उत्सव अभी है वो 23 तारीख को, क्योंकि हमारे भी जगन्नाथपुरी में पुरोहित जी मित्र हैं हमारे विद्यापति जी, वो कह रहे हैं कि हम अभी वृंदावन आएंगे आपको मिलने के लिए, क्योंकि हमने ढोले यात्रा होने दो 23 तारीख को फिर हम आएंगे। ढोले यात्रा नहीं होली, अभी जगन्नाथपुरी में भी होली का रंग चढ़ रहा है, ठाकुर जी को चंदन और होली, चंदन और गुलाल से होली खेलते हैं, रंग अर्पण करते हैं सब जगह पर। जगन्नाथपुरी में विशेष रंग रंगपंचमी यानी कि होली का उत्सव आयोजित किया गया है। तो भक्त कह रहे हाँ महाप्रभु जी अभी थोड़ा रुकी ढोले यात्रा होने के बाद जाइए, तो उसके बाद बोलेंगे अरे नया साल है पर वो आ रहा है वो उसके बाद जाइए, तो उसके बाद बोलेंगे अरे उसके बाद रथ यात्रा आने वाला रथ यात्रा करके जाइए, तो उसके बाद बोलेंगे अभी झूला यात्रा आने वाला है झूला यात्रा झूला के भगवान को जाइए, तो बोलेंगे कार्तिक आ रहा है फिर कार्तिक में उत्सव भाग लीजिए, तो बोलेंगे वो ओणम षष्ठी आएगी भगवान को भी ठंड में उनको नए नए ऊनी वस्त्र जो है अर्पण किए जाएंगे वो उत्सव देख के जाइए, तो बोले मकर संक्रांति आएगी बड़ा बड़ा उत्सव है, तो बोलेंगे कार्तिक में वर्ष श्रृंगार वेश उसको देख के जाइए, अरे राजपूर्ण में आएगी अरे गोपाष्टमी आएगी, ऐसे करते करते 2-3 साल उनको खींचा उन्होंने हर चीज। फिर वो उत्सव आया जो पहली बार कहा था उन्होंने कि फिर वो ढोले यात्रा आ गई, तो भी बोल रहे भी उसको करके जाइए, लेकिन फिर हर बार रोकने रोकने से क्या होता ना अपनी प्रिय इष्ट वस्तु को मिलने का जो उत्कंठा है वो बढ़ जाती है। तो ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु बहुत उत्सुक हो गए जाने के लिए, तो उन्होंने कहा मैं जा रहा हूं बस। तो जब निकले वो वृंदावन जाने के लिए तो क्या हुआ फिर हजारों लाखों की संख्या उनके पीछे जा रही है, बोला हमको इनके बिना रहना मुमकिन नहीं है, हम भी जाएंगे जहां पे आप जाएंगे, वृंदावन जाओ किधर भी जाओ शहर में जाओ नगर में जाओ ग्राम में जाओ हम आपके पीछे आ रहे हैं, क्योंकि आपके चरणों में वृंदावन धाम बोलो धाम तो यह प्रकट हो रहा है। तो सनातन गोस्वामी ने उनको कहा एकांत में कि वृंदावन में वैसे मत जाइए, इतने बड़े समुदाय को लेकर मत जाइए, आप एकांत में जाइए, आपको वृंदावन भूमि का आनंद करना है तो ये सब हमारे मराठी में कहते लटंबर लटंबर यानी बहुत सारा समुदाय लेके मत जाना। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी की बात मान लिया वापस चले गए, और एक दिन उन्होंने अपने निकट के भक्तों से चर्चा किया कि मुझे अभी जाना है वृंदावन, मैं अकेले जाऊंगा बस कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो भक्तों ने बहुत विनती किया स्वरूप दामोदर जी ने और सब भक्तों ने कि आप ऐसा मत जाना, अरे आप एक हाथ से नाम गिनेंगे अरे एक हाथ से दूसरे हाथ से नाम गिनेंगे तो आपके वस्त्र कौन पकड़ेगा, आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, आप तो भाव में ऐसे लगे रहोगे तो आप भूखे रहोगे और बेहोश हो जाओगे शरीर में कमजोरी आ जाएगा, तो कम से कम एक व्यक्ति को लेके जाइए दो व्यक्ति को लेके जाइए, एक आपके वस्त्र पकड़ेगा एक आपके लिए भोजन बनाएगा, अरे दो व्यक्ति तो बहुत होते हैं नहीं चाहिए हमको दो व्यक्ति। फिर बाद में भक्तों ने उनको बनाया नहीं नहीं आपको बलभद्र भट्टाचार्य को और एक ब्राह्मण को ले जाना है बस, और वो आपके लिए आपका देखभाल करेगा, क्योंकि आप तो ऐसे भाव में रहते हो कहीं गिर जाते हो बेहोश हो जाते हो, हाँ कहीं कोई जानवर आ गया जंगल में कोई आपको कष्ट हुआ तो हमको रहा नहीं जाएगा उससे, इसलिए आपकी रक्षा में कोई जो अपने सुदबुद्ध को बनाए रखा ऐसे एक आदमी चाहिए आपके साथ में, एक सुदबुद्ध को खोने वाला आदमी आप हो आपके साथ में कोई चाहिए, दो आदमी को लेके जाते हैं और बीच बीच झारखंड से यात्रा करते हैं। झारखंड में तो उन्होंने चमत्कार कर दिया पूरा, आज तक भगवान के किसी अवतार ने चमत्कार नहीं किया। झारखंड में जंगल के जो जंगली श्वापद हैं जो जानवर हैं पशु हैं जो दुश्मन है ईश्वर के, जैसे कि शेर और हिरण, वहां सिंह और हाथी, ऐसे खूंखार जानवर जो है वो सब एकत्र हो गए इनका कीर्तन देखकर। भूमि पिघलने लगी। आज भी झारखंड में आप जाएंगे तो भगवान के चरण चिन्ह कई जगह पर है। अरे केवल भगवान के नहीं है, तो भगवान ने कीर्तन किया जंगल में एकांत में, केवल बलभद्र उसका प्रेक्षक है, कोई नहीं है, और ब्राह्मण। तो सारे जानवर वहां इकट्ठा हो गए उनके देखकर, उनको मोहित हो गए उनको देखकर, और उनके साथ नृत्य करने लगे, अपने चार चार पैर के दो पैर को उठाकर सब जानवर जंगली नाच रहे हैं उनके साथ में। हम तो खाली उसको ऐसा कल्पना ही कर सकते। तो महाप्रभु जो है उसको वास्तव में उतारा, और यहां तक नहीं कि वो भाव विवरों को नाचने लगे, अपने हाथी के शरीर को या शेर के शरीर को भूल कर एक दिव्य आत्मा के रूप में आनंद का अनुभव कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने शत्रु पक्षी जो प्राणी है उनको गले भी मिल रहे हैं प्रेम से। आप सोच सकते हैं, इमेजिन करो आप, हाथी इतना बड़ा ऊपर जो सिंह के साथ में गले मिल रहा है। हरी बोल हरी बोल, जय हरी हरी, बोले हरी हरी। तो ऐसे जब दिव्य संकीर्तन हुआ उस समय उन हाथियों के पैरों के भी निशान बने, सिंहों के पैरों के निशान बने, हिरणों के बने, महापुरुष जगन किंगल ने बने। सभी लोग अपने शरीर के बंधन से मुक्त होकर एक आत्मा के रूप में, भगवान के प्रेमी के रूप में भगवान का नाम पुकार कर गौलोक धाम का आनंद प्रकट और अनुभव कर रहे थे। इसलिए उनके भी चरणों के स्पर्श से पृथ्वी पिघलने लगी, और आज भी झारखंड में उन प्राणियों के पदचिन्ह भी वहां पहुंच चुके जिनके दर्शन करके हमारे से जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला से परमानंद मुक्त हो सकते हैं। ऐसा दिव्य वातावरण उन्होंने झारखंड के जंगल में करा था। तो उसके बाद में वो मथुरा आए। मथुरा जब आए तो मथुरा बहुत अद्भुत भगवान की लीला। मथुरा आने के पहले वो अग्रवन गए। अग्रवन का मतलब क्या है जानते? अग्रवन मैंने आज का आगरा, आगरा के ब्रज में आता है। भगवान अग्रवन गए, और अग्रवन में एक विशेष लीला स्थली है, जमदग्नि और रेणुका का घर है, परशुराम जी भगवान का जन्मस्थान है, उसको रेणुका ग्राम कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वहां गए और जमदग्नि और रेणुका का मूर्ति का दर्शन किया उन्होंने, परशुराम का जन्मस्थली का दर्शन किया उन्होंने। उसके पहले वो प्रयाग में थे, प्रयाग से वहां पर आए थे वो, और रेणुका ग्राम गए। उसके बाद में जो तो मथुरा आए तो उन्होंने यमुना जी में स्नान किया, बहुत आनंद दिया। यमुना जी का स्नान लेकर विश्राम घाट आए, और विश्राम घाट पे कई लीलाएं हैं आप जानते हैं। विश्राम घाट में श्री कृष्ण भगवान ने कंस को मारकर विश्राम किया, वराहदेव ने हिरण्याक्ष को मारकर सत्ययुग में विश्राम घाट पे यमुना किनारे पे विश्राम किया है, और वहां पर जब वो विश्राम फरमा रहे थे तो भूमि देवी जिनको उन्होंने अपने सिंहों पर उठाकर अपनी कक्षा में स्थापित किया दोबारा, वो भूमि देवी देवी के रूप में उधर प्रकट हुई। भगवान को देखा कि भगवान आराम से बैठे हैं तो कुछ संवाद किया जाए, क्योंकि उन्हीं के संबंध के द्वारा भौम का जन्म हुआ, तो बाद में भौमासुर बना। जब भगवान ने उनको उठाकर स्थापन किया तो उस संपर्क से एक पुत्र की पुत्र का जन्म हुआ, वो भूमि का पुत्र भौम नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे जाकर उसने बाणासुर से संग किया, इसलिए वो भौमासुर या नरकासुर बना, और भगवान ने अपना पुत्र होते हुए भी उसका वध कर दिया, वो तो अलग कहानी। तो वराहदेव की पत्नी भूमि देवी नम्रता से वहां पर आई, और वहां पर उस विश्राम घाट में भगवान वराहदेव ने भूमि देवी को पूरा ब्रज का महात्म्य सुनाया, एवरी सिंगल प्लेस। उसमें वो बताते हैं भूमि देवी को कि 660 अब्ज 660 बिलियन लीला स्थलीय ब्रज में उपस्थित है। गिनते जाओ, 660 के ऊपर आप 9 शून्य लगा दो, मतलब 66 के ऊपर आप 10 शून्य लगा दो, इतने पवित्र स्थलियां लीला स्थलियां भगवान की ब्रज में उपस्थित है। उसका पूरा वर्णन जो है संक्षिप्त में भगवान ने भूमि देवी को किया है, और वो आदि वराह पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। आदि वराह पुराण वहीं पर प्रकट हुआ। उस जगह पर चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया और भाव विवर होकर कीर्तन किया। तो उसके साथ हजारों लोग जमा हो गए उनका दिव्य स्वरूप देखते हुए, उनके आंखों से आंसू आए अति आनंद के। हाँ, वो सब लोग मद से मस्त हो गए, मदहोश हो गए वो, और उन्हें जब वो जब रोए तो रो रहे थे, उनको ऐसा हुआ ये श्री कृष्ण भगवान स्वयं है, ये और कोई नहीं हो सकते, श्री कृष्ण भगवान स्वयं ही है ये। ये सोचकर उनकी आंखों से और आंसू आए कि हमारा कितना भाग्य है, साक्षात विजेंद्र नंदन हमारे सामने प्रकट हो गए। उनको छोड़ना नहीं चाहते थे, एक सेकंड के लिए उनको वो छोड़ना सबको भगवान ने हरिनाम संकीर्तन करके आनंद के सागर में डुबो दिया। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। भगवान केशव देव के मंदिर के मथुरा, इस बीच में उन्होंने केशव देव के मंदिर में जाकर, क्योंकि केशव देव जो चार विष्णु के स्वरूप है उसमें से मथुरा में केशव देव है, वृंदावन में गोविंद देव है, हाँ, और गोवर्धन में हरिदेव है, तो ऐसे केशव देव के सामने भगवान ने नृत्य किया। तो जब वो नृत्य कर रहे थे तो मथुरा वासियों को लगा कि साक्षात केशव देव ही नृत्य कर रहे हैं, इनमें और केशव देव में कोई अंतर नहीं है। और आप बोलेंगे कि अरे हर जगह तो वही वर्णन है, हजार लोग जमा हो गए, उन्होंने भगवान को देखा, उन सबको अनुभूति हुई कि भगवान ही है, सब लोगों की आंखों से आंसू आए, सब लोग भाव विभोर हो गए, सब लोग उनके सामने दौड़ते रहे, यही वर्णन सब जगह आता है। लेकिन ये सत्य है कि जहां जहां भगवान गए वहां वहां उन्होंने गौलोक धाम का दिव्य आनंद दिव्य प्रेम को हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से प्रकट किया। मतलब अभी वो उन्होंने पंजाबी राग में नाच कर रहे हैं तो यहां पर गौलोक प्रकट हो गया, उसके बाद में वो नोएडा गए वहां पर गौलोक प्रकट हो गया। तो आप बोलेंगे सेम चीज है, लेकिन आपको जो अनुभूति हुई उनके नई अनुभूति हो रही वहां पर। इस तरह से हजारों जगह पर गौर गौरांग महाप्रभु वृंदावन में गए और जहां जहां नाचे उनके लिए वो पहला अनुभव था। कुछ लोग साथ भाग रहे थे लेकिन कुछ लोग वहां पर नए प्रकट हो रहे थे, मतलब देख रहे थे उनको, और हर लोगों ने अपने अपने जगह पर इस गौलोक धाम के दिव्य प्रेम का अनुभव किया महाप्रभु के दर्शन के माध्यम से। और जैसे मुझे अनुभूति हो गई कि हाँ ये साक्षात भगवान ही है, और अभी आपको अनुभूति हो रही थी, आपके तो नई अनुभूति होगी ना वो, और यू इट इज न्यू अनुभूति। इस तरह से हरेक व्यक्ति ने यह अनुभव किया कि हमारे गोविंद देव जो है वो यही है, केशव देव के भक्तों ने अनुभव किया हमारे केशव देव यही है। हर जगह पर उन्होंने अपने अपने भगवान को उनमें देखा और ये पता चला उनको अनुभूत दाव्य दिव्य साक्षात्कार हुआ उनको कि जो हमारे भगवान परम भगवान है उनको जिसको हम पूछते हैं वही आज गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हो रहे हैं। अभी माधवेंद्रपुरी का संपर्क ये जहां पर जिला में हो रहा है उसका लिए मैं ये सब कथा बताया। तो एक ब्राह्मण मिला उनको मथुरा में जमुना जी के पास, उसका नाम था सनोडिया ब्राह्मण। वो जो ब्राह्मण था, ब्राह्मणों ने कैसा बताया कि कुछ ब्राह्मण लोग ब्राह्मणों को भी बुरे कहते हैं, वो ब्राह्मणों के घर में अग्निहोत्र करते हैं, नामकरण करते हैं, विवाह संस्कार ब्राह्मणों के लिए करते हैं, उनको उच्च कोटि के ब्राह्मण कहा जाता है। कुछ ब्राह्मण लोग क्षत्रियों का कुल पुरोहित होते हैं, वो क्षत्रियों के घर में संस्कार करते रहते हैं। कुछ ब्राह्मण लोग वैश्यों के लिए करते हैं, कुछ ब्राह्मण लोग शूद्रों के लिए करते हैं, तो सब लोगों को ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। तो ये सनोडिया ब्राह्मण जो थे वो थोड़े से कम दर्जे के ब्राह्मण थे, लौकिक दृष्टि से वो वैश्यों का और शूद्रों का संस्कार करते। जब वो महाप्रभु के सामने आए तो महाप्रभु के सामने सब लोग नृत्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो खाली देख रहे हैं, एवरीबॉडी इज डांसिंग। और महाप्रभु जी ने देखा कि ये सनोडिया ब्राह्मण जो है इसके नृत्य में और इसके नृत्य के द्वारा प्रकट होने वाले प्रेम में कुछ विशेषता है, इज अ वेरी स्पेशल पर्सन। तो उन्होंने उनको पूछा कि ब्राह्मण आप कौन हो, तो उन्होंने कहा कि मैं वैसे वैसे ब्राह्मण हूं, वैश्यों की शूद्रों की सेवा करता हूं। बाद में बोला कि आपके गुरु कौन है, तो कहते हैं कि मैं माधवेंद्रपुरी का शिष्य हूं, मुझे आपके नृत्य को और आपके प्रेम को देखकर मुझे यह अनुभव हुआ था कि आपको माधवेंद्रपुरी के साथ संबंध हो सकता है। ऐसे माधवेंद्रपुरी थे जिनका प्रेम भगवान के प्रति बड़ा विशेष था, स्पेशल। और महाप्रभु जगन ने उसका दर्शन नहीं किया था, केवल श्रवण किया था, श्रवण से उनकी अनुभूति का प्रयास किया था, और श्रवण से जो अनुभूति हुई थी उसमें उससे भी हजारों लोगों में से बीच में नाचने वाले एक व्यक्ति का अलग भाव और अलग प्रेम का प्राकट्य उन्होंने पिकअप किया, उसको पहचाना उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया फिर मैं माधवेंद्रपुरी का शिष्य हूं और मेरे घर पे माधवेंद्रपुरी जी ने भोजन किया है। महाप्रभु तो आनंद से विभोर हो गए, क्या कह रहे हो आपके घर पे माधवेंद्रपुरी जी ने हमारे दादा गुरु ने भोजन किया है तो हम भी आपके घर पे भोजन करना चाहते हैं। कन्हैया ब्राह्मण कहते हैं अरे आप तो भगवान हो और मैं तो उच्च कोटि का ब्राह्मण भी नहीं हूं, आपको खिलाने के योग्य नहीं हूं, मैं तो शूद्रों की वैश्यों की सेवा करता हूं ब्राह्मण के रूप, तो आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा, आपके लिए आपके कीर्ति के लिए आपके स्थान के लिए आपके पद के लिए आप जो है हो उसके लिए योग्य नहीं होगा। तो महाप्रभु चैतन्य कहते हैं जिस घर में माधवेंद्रपुरी ने भोजन किया है उस घर में भोजन करने के लिए मेरा सौभाग्य होगा, संकोच की बात तो दूर रही, मुझे उस घर में प्रसाद पाने को अवसर प्राप्त होना ये मेरे लिए बड़े परम सौभाग्य की बात है, तो आप मुझको उपकृत करें मुझ पर कृपा करें और मुझे अपने घर में भोजन करें। तो सनडिया ब्राह्मण के घर में भाव उदोर होकर प्रेम से उनके घर में सनडिया ब्राह्मण के हाथ से और उनके ये प्रेम के आदान प्रदान से सनडिया ब्राह्मण इतने प्रेरित हो गए। फिर एक 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 सेकंड के बाद चरण को रखेंगे तो दूसरा भी रखो ऐसे डायरेक्ट है। और जो असिस्टेंट होता है पर्सनल असिस्टेंट वो बड़ा परेशान होता है, उसको क्या है दिन में तो तीन बार भोजन कर देना, देखता चौथा डिनर और 30 लोग बुला रहे हैं तो 3 लोगों को हाँ कहेंगे 27 लोगों को हाँ कहेंगे तो 27 मिलेंगे वरदान 3 मिलेंगे पता है कि नहीं ऐसे फिर डिफिकल्ट सिचुएशन किसको किसको ना कहें, वो कहेगा मैं सीनियर डिवोटी हूं, हम कहते हैं बहुत दिन से भक्ति कर रहा हूं 5 दिन से वेट कर रहा हूं, 3 बार में ना बोल चुका हूं, चौथी बार आपसे बोल रहा हूं, तो पहली बार बोल रहा हूं, दूसरी बार बोल चुका हूं, ऐसे बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन होता है। बलभद्र भट्टाचार्य ऑलरेडी इस परेशान नहीं थे लेकिन महाप्रभु ने स्वयं कहा, क्योंकि अगले जगह क्या होता है जो गुरु जी का शिष्य होता है वो किसी के घर में एक पति करता है कि आपके इनके घर पर लंच होगा, गुरु जी किसी को मिलते हैं रस्ते पे बोलते हैं अच्छा दादा जी आई वॉन्ट टू कम टू हाउस प्रसादम टुडे आफ्टरनून और अपना प्रोग्राम तय कर लेते हैं और ये सेटिंग वहां पर हो रही है कि आप अभी आ रहे हैं तो गुरु जी आपको बताते हैं हो गया ना एम्बेरसमेंट। इस तरह का ऐसा अनुभव हमको भी होता है, उस तरह का अनुभव गलत है। फिर वहां से वो भगवान मथुरा के 24 घाट गए, तो वो तो बहुत मथुरा में जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्रुव जी का घाट ध्रुव जी आए नारद जी के आदेश पर और उन्होंने उनके उद्देश्य किया वहां से स्नान करके मधुबन गए, प्रहलाद जी ने भी वहां पर प्रस्थान किया। ऐसे 24 तीर्थ है जमुना जी के घाट और 24 घाट पर जो स्नान करेगा वो कभी दुनिया में जन्म नहीं लेगा, ऐसा वरदान दिया है। तो सारे 24 घाटों में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया और भाव विवर होकर हर घाट पर नृत्य किया। वो भक्ति रत्नाकर कार कहते हैं कि मैं क्या वर्णन करूं आपको, पर अनंत शेष भी इनके दिव्य लीला का वर्णन नहीं कर सकते, वही मैं दोहराऊंगा हर बार कि हर बार भगवान को उन्होंने अनुभूति किया उनके अंदर और सबको अनंत के सागर में डुबोया, इसके आगे मैं क्या वर्णन कर सकता हूं, आई कैन नॉट डिस्क्राइब, अनंत शेष भी नहीं कर सकते वर्णन, ऐसे ही हर बार बताते हैं। उसके बाद में सब लोगों को भगवान ने श्री कृष्ण प्रेम दिया और इस 24 घाट के स्नान करने के बाद जो भी कीर्तन किया उन्होंने उसमें सारे देवता लोग जो है तो साधारण व्यक्ति बनकर भगवान के चरणों का पहली जल और सब करने में आते हुए सभी देवताओं ने भगवान का गौरव गाया। वहां पर यह सब मथुरा का यात्रा करने के बाद चैतन्य महाप्रभु एक जगह बैठे जिसका नाम है बलदेव कुंड और कृष्णकुंड, उस जगह पर हजारों लोग उनको घेर के बैठे हुए
और उस जगह का ऐसा मिला है कि भगवान वहां पर गौ चारण करके विश्राम करते थे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की
आनंद भरी स्थिति को देखकर जो हजारों लोग उनके आसपास बैठे थे, जो भगवान बैठ रहे थे, वो चर्चा कर रहे हैं, सन्यासी कितने तेज बुद्ध कैसे हो सकते हैं, कौन है ये सन्यासी? मेरा तो ये विचार है कि ये सन्यासी नहीं है, सभी भगवान कृष्ण है, ये अपनी पहचान को छुपा रहे हैं, अपनी पहचान को दबाए रखने के लिए, छुपाए रखने के लिए ये सन्यास लेकर घूम रहे हैं। लेकिन मेरा तो हृदय से अनुभूति हो रही है कि साक्षात कृष्ण है, ऐसे वो चर्चा कर रहे हैं। केवल हम लोगों को बहकाने के लिए वो सन्यास लेकर घूम रहे हैं।
और ये वर्णन कौन कर रहा है महाप्रभु के लीलाओं का? राघव पंडित नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य को कर रहे हैं। राघव पंडित जी चंपकलता देवी के अवतार हैं, भगवान की अष्ट सखी में से एक हैं। और वो राघव पंडित बनकर आए, उन्होंने बहुत भगवान से मिला किया। उनका घर था पनी हाथी में। ऐसे कहा गया है कि राघव पंडित हर रोज भगवान के लिए हजारों व्यंजन बनाते थे। और चैतन्य चैतन्य को दिखा है उन्होंने, जैसा लिखा है कि राघव पंडित के झोली में जो जो व्यंजन रखे गए हैं उसका वर्णन जो सुनेगा वो तो भगवत धाम पहुंच जाएगा। अरे पढ़ेगा तो उसको झोली में क्या क्या आइटम बना के रखे, इमेजिन। इतने महाप्रभु का लीला है, इतना अद्भुत लीला है, इतना औजार लीला है कि राघव पंडित के झोली में जो व्यंजन रखे गए हैं उसका वर्णन सुनकर एक व्यक्ति कृष्ण प्रेम को प्राप्त करके गौलोक धाम जाते। ऐसे राघव पंडित थे। वो गोवर्धन के जो पुत्री है, पुत्री वहां पर गोवर्धन समाप्त हो जाता है दक्षिण की ओर। पुत्री के बाद उसकी गुफा है, उस गुफा में वो तपस्या करते, भजन करते थे। तो वो जब वृंदावन में मिलने को आए तो उन्होंने जीव गोस्वामी को बताया कि जीव गोस्वामी महाराज अभी पुत्री में जाने वाला है। जीव गोस्वामी उसी के पहले दिन उन्होंने चर्चा किया था, उनके जो शिक्षा शिष्य थे तीन, आचार्य श्रीनिवास, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद गोस्वामी, लेकिन तो अलग गुरु के शिष्य थे वो, लेकिन गुरुजी गोस्वामी के अंडर वो ट्रेनिंग दे रहे थे। तो उसके पहले ही दिन उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि आप लोगों को एक बार वृंदावन की गोवर्धन की और वृद्ध की परिक्रमा करनी चाहिए। और सेकेंड डे राघव पंडित जी वहीं आए, उन्होंने कहा कि मैं छोड़ते जा रहा हूं कुछ दिनों में। उन्होंने वहीं पर विनती किया जी गोस्वामी ने कि मेरे ये शिक्षा शिष्यों को आप ब्रज का दर्शन कराइए। तो राघव पंडित ने बड़े प्रेम से उनको आलिंगन दिया। ऐसे कहा कि राघव पंडित आचार्य श्रीनिवास और श्यामानंद गोस्वामी और नरोत्तम दास इतने विभोर हो गए, वहीं पर उनको आलिंगन दिया उन्होंने, प्रेम के अश्रुओं से भिगा दिया उन्होंने। उनको लगा कल से ही हम जाएंगे वृंदावन ब्रज की परिक्रमा करने। और इस प्रकार से उन्होंने ये परिक्रमा आरंभ किया। तो ये परिक्रमा का वो उनको ले जा रहे हैं हर जगह पर, जहां पर हम लोग वर्णन करते जा रहे हैं ना, वहीं पर उनको ले जाकर वही उनका ही वर्णन है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इस जगह जब पहुंचे बलदेव कुंड कृष्ण पहुंचा, तो जो ये वर्णन बताते बताते कि लोगों का लोग क्या चर्चा कर रहे हैं महाप्रभु के बारे में, वो चर्चा का वर्णन करते करते राघव पंडित भावभोर हो गए और गिर गए बेहोश होकर। और उनको देखकर नरोत्तम जी और आचार्य श्रीनिवास बेहोश होकर गिर गए और लोटपोट हो गए रज में, वहां पर रो रहे प्रेम से। ऐसी परिक्रमा होनी चाहिए ब्रज की, हमारे आचार्य बता रहे हैं। हम लोग तो कथा सुनते हैं, कथा में सोते रहते हैं, कथा में बैठते सोचते रहते हैं कि इतना देर कथा क्यों हो रही है, प्रसाद कब मिलेगा, घूमने जा रहे हैं पेड़ के नीचे, इतना तकलीफ हो रही है। लेकिन ये तो किए, इनका ना खाने का ठिकाना है, ना पीने का ठिकाना है, ना बैठने का ठिकाना है। जगह जगह ये भाव विभोर होकर बेहोश होकर गिर रहे हैं, ऐसा वर्णन इस कथा में आया। तो इस जगह पर वो आचार्य श्रीनिवास और सुमदास बहुत ही चैतन्य महाप्रभु का नाम पकड़ते पकड़ते बेहोश हो गए। उसके बाद बहुला बनाए, उन्होंने बारह बनों का दर्शन किया। बहुला बन के बाद में बारह बन में गए। अभी यहां का वर्णन आप सुझा बहुत आनंद आएगा। जब वो बारह बनों में घूम रहे थे, बहुला बन में चल रहे, तो लाखों गाय वहां पर आ गई, भाग भाग हुई। कैसे आए? उनके कान ऊपर, उनकी पूंछ ऊपर, उनकी आंखें बड़ी बड़ी, उसे करके भाग भाग के आ रही है। और सब महाप्रभु जी चले में आकर रुक रहे, ऐसे महाप्रभु रोकर उनको देख रही है एक तक नजर से, उनकी आंखों से अश्रु आ रहे। खुद गाय जाकर उनको चाट रही है, खुद जाकर चरणों को चाट रही है, तो शरीर को चाट रही है। फिर उसमें क्या होता है, उसके बाद में
उधर से हिरण आते हैं, भाग भाग के भगवान के चरणों को देख रहे हैं, भगवान के आंखों को देख रहे हैं। फिर मोर आते हैं नृत्य करने लगते हैं, तोता आते हैं, कोयल आती है गान गीत गाने लगते हैं भगवान के स्वागत में। कोयल आती है कृपा करता है, और विशेष बात यह होती है कि जिस रास्ते से भगवान जा रहे हैं उसके अकीर्त युद्ध में जितने पेड़ हैं वो झुक झुक कर भगवान के ऊपर पुष्पों का वर्षा करते हैं अपने पुष्पों में। ये देखकर ये वर्णन सुनकर दोनों हैरान हो गए, कैसे भी सुना नहीं कि पेड़ों ने पेड़ों का तो फूल तो अपने निकालने करते और फिर अपने हाथ से हम उसका वर्षा करते हैं, क्या माला बनाने में क्या करते हैं, तो पेड़ आके देता नहीं पकड़ो अपने जाके पेड़ को फूल निकालने पड़ते हैं। शास्त्र में लिखा गया है कि पेड़ क्योंकि वो पादप है क्योंकि एकदम खड़े रहते हैं सकते हैं, तो उसके जो फूल आते हैं या फल आते हैं तब हम जैसे लोग उसको निकालकर भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं तो पेड़ को अगले जन्म में मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। इसलिए हमको कभी भी किसी भी पेड़ को जब घर आता है तो उसके फूल निकालकर भगवान को अर्पण करने का प्रयास करना चाहिए। ये आपके तरफ से उस पेड़ के लिए करुणा है तो खुद भगवान की सेवा नहीं कर सकता है, आप उसके प्रवर्तन को भगवान के चरणों में अपने जीवन से अर्पण करते हैं। लेकिन यहां पर साक्षात पेड़ भाव विभोर होकर अपने फूलों का बर्षाव कर रहे हैं, उसके आगे सुनिए केवल वर्षा ने किया, कई पेड़ों ने गिरकर भगवान को दंडवत प्रणाम किया, उनके चरणों को छुआ, ऐसा कभी गर्मी कहीं आया नहीं किसी भी अवतार की लीला में नहीं। वैसे कहा गया कि वो जो ग्वाला था मतलब तो कई ग्वाले थे, महाप्रभु जी आगे आगे जा रहे थे, आप सोच सकते हैं इतना एक तो हजार लोग पीछे से हैं, वो से लाखों गाय उनको घेर चुकी है, उसके आगे मोर है, उसके आगे हिरण है, आगे कोयल जा रही है, उसके आगे तोता जा रहा है, उसके आगे पिकअप डांस कर रहे हैं, कितना सीन रहेगा वो, कैसा रहेगा वो सीन, और निकलने को नहीं दे रहे उनको, और गायों के पीछे पीछे जा रही है चाट रही है उनको। बड़े बड़े मुश्किल से ग्वालों ने उन गायों को उनसे अलग किया और भगवान से आगे चले गए। देखिए किसी ने कहा कौन कहता है सन्यासी है, तो प्रश्न है स्वयं उनका वस्त्र देखिए उनका रूप देखिए यही उनका प्रूफ है, देखिए कितने प्रकार के पंछी उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं, देखो कोयल गा रही है तोता गा रहा है उनको कृष्ण कृष्ण के रूप में पुकार रहा है, देखो 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 मोर नाच रहे हैं कितने आनंद से, देखो उन पक्षियों की आवाज से कितना आनंद प्राप्त हो रहा है, देखो देखो ये पेड़ों को देखो, ये भाई देखो ये जो बेलियां हैं ये पेड़ है, ये तो इस व्यक्ति पर सन्यासी के रूप में छुपा कर अपना रूप आया है उसके ऊपर फूलों का वर्षा है, उनके चेहरे पर कितनी एकाग्रता है, देखो किसी को नहीं दिख रहे हैं नजरों से, केवल चैतन्य महाप्रभु को देख रहे हैं, सारे गाय यहां पर इनकी दोनों तरफ भाग रही है, उनके पूंछ उठाकर उनकी नजरें उठाकर उनके चेहरे की ओर देख रही है और उनकी आंखों से अति आनंद के अश्रु बह रहे हैं सभी जीवों के आंखों से। हम समझ सकते हैं ये सब लोग इनको पहचान रहे हैं और कई समय के बाद में अपने इष्ट देव को देख रहे हैं, ये भाव उनके चेहरे पर प्रकट हो रहा है, हे भाई देखो मैं अपने सद्भाग्य का बार बार वर्णन करता हूं और इन जीवों का सद्भाग्य का भी बार बार वर्णन करता हूं। तो कृष्ण को इस भाव में इस वक्त में देख रहे हैं जो सभी लोगों को विष्णु प्रेम देने के लिए अवतारित हुए हैं, उनकी कृपा से मैं समझ सकता हूं कि ये काली और गौरी हां जैसे राधा कुंड को प्रकट किया उसका वर्णन यहां पर आया है। इस तरह से वर्णन करते करते सब लोग पागल हो गए, महाप्रभु के दर्शन से महाप्रभु का वर्णन करते करते मत होश हो गए। ये वर्णन चाहे भगवान दान घाटी नहीं गए, दान घाटी मतलब घाटी गोवर्धन में उसको कहते हैं जिसमें ऑफिशियल रास्ता होता है इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए गोवर्धन को पार करते हैं, तो गोवर्धन में ऐसी कई घाटियां हैं, हेमंत घाटी दान घाटी है जहां पर मुखारविंद का दर्शन है। तो भगवान ने सनोडिया ब्राह्मण के मुख से वहां पर खड़े होकर दान लीलाओं का वर्णन सुना, तो कैसे वर्षाने से गोपियां आती है मटके में दूध दही माखन लेकर आती है और कैसे भगवान द्वार वालों को लेकर उनका रुकते हैं उनको रास्ता में, तो कहते हैं आप चोर हो, आप हमारी भूमि से जा रहे हो, यहां से जाकर बेचते हो, पैसा कमाते हो, टैक्स पे नहीं करते हो, आपको टैक्स देना होगा, कोई बहुत भैंस होती है, मटका फोड़ा जाता है, गोपियों को परेशान किया जाता है, कभी भगवान को गोपियां परास्त कर देती है। तो इन चटपटी लीलाओं को सुनकर ऐसे प्रश्न आता है कि चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर स्मित हास्य दिया, वॉज वेरी हैप्पी, उनके चेहरे पर हंसी आई, कैसे भगवान सुंदर सुंदर लीला करते हैं। भगवान ने मानसिक गंगा में स्नान किया, हरिदेव का दर्शन किया, बड़े धूमधाम से वहां पर संकीर्तन किया। वहां से भगवान गोकुल और रावल गए, वहां पर उन्होंने रावल का दर्शन किया, राजा रानी के जन्म की कहानी सुनी और बड़े भाव विभव होकर बेहोश हो गए। अनंत शेष भी भगवान के दिव्य प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्या करेंगे भगवान, हम लिखेंगे कि दिव्य प्रेम से मधुर होकर गिर गए। उसका जो गहराई है वो चक्रवर्ती पास कहते हैं, नरेंद्र चक्रवर्ती की, उनके भाव विभोर प्रेम को अनंत शेष वर्णन देते हैं। जैसे महाप्रभु की कृपा से जो भी लोग उनको उनके साथ चल रहे थे, समझ रहे कृष्ण है, महाप्रभु की कृपा से सब लोग के हृदय में प्रेम कृष्ण प्रेम उत्पन्न हुआ, सब लोगों के आंसू से नदियां वही आंसू होती। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु अंबिका बन गए, फिर उसके बाद में वो असुर घाट आए और वर्णन आता है कि यहां तक वो सब लोग उनको फॉलो कर रहे थे, ये बड़ी चतुरता से लोगों को टालते हुए एकांत में असुर घाट में आए। असुर घाट का गौरव तो मानने के असुर घाट जो है वो ब्रज की शुरुआत है, वो साक्षात वैकुंठ है। वहां पर कृष्ण बलराम ने असुर जी को अनंत शेष विष्णु का दर्शन दिया, जल के निश्चंदा जी के नीचे ये बताया कि अभी अश्वर उदाहरण हो रही है। तो कहते हैं गुरु जी से भाग्यवान थे, इतने महान वैष्णव थे, उनको भगवान ने ये दिव्य रहस्य जो किसी को नहीं दिखाया वो उनको दर्शन कराया। ब्रज में उन्होंने किसी को बताया नहीं कि वो भगवान है, जहां जहां भगवान बनने की कोशिश किया तो फिर तो प्रेम से विभोर हो गए, वो हावी हो गए गोपियों के प्रेम से, और अपना ऐश्वर्य रूप प्रकट बनाए रखना उनके लिए मुमकिन नहीं हुआ। कई जगह पर उन्होंने थोड़ा दिखाने की कोशिश किया लेकिन वो हार गए, बिल्कुल माधुर्य से प्रभाव से उनका ऐश्वर्य जो है छुपता रहा हमेशा। तो अक्रूर जी को पहली बार उन्होंने दर्शन कराया गंगा जी के जल के नीचे, ऊपर जल के ऊपर दस में बैठे हुए हैं, जल के नीचे डुबकी लगाते तो देखते हैं कि अनंत से स्नान पर विष्णु भगवान बता रहे हैं। फिर उन्होंने वहीं पर निवास किया, हर रोज वो अक्रूर घाट में भोजन करते थे शांति से, और इमली तला में जाकर भगवान के नाम का जप करते थे कि गंगा जी को बड़े प्रेम से निहारते थे। दो महीना उन्होंने ब्रज में निवास किया। इमली तला वो दिव्य स्थान है जो जमुना किनारे में है, और जमुना किनारे में उस पेड़ के नीचे बैठकर जहां पर राधा रानी का अभिषेक हुआ है, वृंदावनेश्वरी के रूप में घोषित किया गया उनको, जहां पर राधा रानी को पेड़ के शाखाओं की जिधर बीजों की खेत लगी हुई है, जहां पर श्री कृष्ण भगवान गोपियों को छोड़कर जब रास में छोड़कर आकर वहां बैठते थे, राधा रानी का नाम करते थे, उनके चरणों पर ध्यान करते थे, और उनके चरणों में ध्यान में बंधा होकर श्री कृष्ण भगवान के सामने रंग के होते थे, वो गौर बल धारण करते थे। उस जगह पर चैतन्य महाप्रभु बैठकर जमुना जी को बड़े प्रेम से निहारते हुए श्री कृष्ण नाम का जप करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु गौर वर्ण के थे, राधा रानी ने अपनी क्रांति से उनको ढक दिया था, हृदय में उनके राधा रानी का भाव था स्वयं कृष्ण के और क्रांति राधा रानी की थी। ऐसे गौर वर्ण में इस दो महीने के दौरान चैतन्य महाप्रभु हर रोज इमली तला में बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे और गौर वर्ण उनका सामना होता था, इतना भाव से वहां पर जप करते थे, इतनी गहराई से कि गौर वर्ण के गौरांग महाप्रभु कृष्णमय होकर सांवले रंग के होते थे, जो दिव्य दर्शन रोज प्राप्त होता था। तो वो जो जब किस स्थली है जब आप लोगों को कैसा करना चाहिए, सब कुछ भूलकर भगवान को पुकारते हुए भगवान से एक रूप नाम से एक रूप होने वाला कार्य जो है वैसा जप नहीं, केवल खुद का जप नहीं किया, ब्रजवासियों के लिए भक्तों के लिए उन्होंने दो महीना तक उनके जप के विषय में वहां पर गाइडेंस दिया, आगे सेमिनार कर सकते, वहां पर भगवान के नाम के विषय में उनकी गहराई में उनके जप करने की विधि के विषय में भगवान स्वयं दो महीने तक उन्होंने लेक्चर दिया। और एक दिन वहां पर क्या हुआ, एक राजपूत राजा आया कृष्णदास, सुना था कि कोई
भोर वन संख्या से नृत्य कर रहा है, बहुत भाव लोगों के ऊपर भूख के आया, देखा जैसे देखा तो भाव लोग गिर गया, दोनों को लिपट गया, मां तो उन्हें उनको डर लगा कि प्रेम भाव को देखकर प्राकृतिक भाव के हमें आपके साथ रह सकता है, साथ ही करना चाहता।
राजपूत ने राज्य छोड़कर महाप्रभु का सहारा लिया तो चौथा आदमी इकट्ठा हो गया,
दो ब्राह्मण पहले एक कनौड़िया ब्राह्मण और ये कृष्णदास राजपूत वहीं पर।
एक दिन जब कथा चल रही थी तो आज हल्ला उठ गया, अफवाह उठ गई कि कृष्ण भगवान का अवतार हो गया जमुना जी में, रात को कृष्ण भगवान आते हैं और कालिया पर नाश करते हैं, रोज रात को लीला हो रही है, सब ब्रज में सब लोग बात फैल गई। तो कुछ कुछ लोग महाप्रभु चैतन्य सी कथा से निकलकर जाकर देखने को जा रहे हैं कि क्या दर्शन है देखो। महाप्रभु ने बहुत गुस्सा किया, महाप्रभु बहुत गुस्सा किया कि ऐसी अफवाहों में आपको बहना नहीं चाहिए, अभी कोई अवतार का समय नहीं है भगवान, पता करो अपने शिष्य को भेजा हमें बोला पता करो। तो पता करके क्या मालूम पड़ा कि रात में जमुना जी के अंधेरे में एक मछुआरा अपनी बोट में एक क्या कहते हैं उसको लैंटर क्या बोलते हैं उसको लालटेन लेकर मच्छी मार रहा है। तो लोग सोच रहे हैं जो लालटेन का दिया है वो कालिया के ऊपर का मणि है चमकता हुआ, और जो मछुआरा है वो कृष्ण है जो उसके ऊपर है और वो नाच रहा है उसके ऊपर, लेकिन वो तो फिशिंग कर रहा है। जब पता चला तो और महाप्रभु लोगों को डांटा कि आप लोगों को ऐसे अफवाह में बहना नहीं चाहिए, आप लोगों को सिद्धांत समझना चाहिए, तत्व का अभ्यास करना चाहिए, ऐसे यहां वहां की बातों में बहना नहीं चाहिए, आपको दिमाग से और आध्यात्मिक विद्या के अनुकूल बात करनी चाहिए। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, बल्लभद्र भट्टाचार्य बेचारे परेशान हो गए, तो बोल रहे हैं ये रोज एक पेड़ पर बैठ के जब करते हैं तो गिर जाते हैं, कभी जमुना में गिर जाते हैं, कभी यहां लोटपोट होते हैं, कभी इधर होते हैं, तो कैसे संभालो, इतना ब्रज में समय आ रहा है इतना ये भाव विभोर होकर और व्याकुल होते जा रहे हैं, संभालना ऊपर से लोगों का इन्फॉर्मेशन वो पूरा नहीं कर पाया। तो इन्होंने एक दिन भगवान से विनती किया, भगवान अभी आप चलिए ब्रज से, लेट अस गो बैक। भगवान ने बेचारे समझ गया दुविधा को, तो चलो चले गए मथुरा चले गए, राजपूत और चौंडे ब्राह्मण पीछे रहे, विदा करने को मथुरा तक आए। अगर मथुरा को छोड़कर जा रहे थे तो ये महाप्रभु चैतन्य वापस कीर्तन में बेहोश होकर गिर गए, बहुत देखो बेहोश रहे, तो राजपूत हवा दे रहे पानी दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसके जाने के लिए, महाप्रभु चैतन्य होश में नहीं आ रहे, तो वक्त ढूंढा उतने में से वहां पर पठान लोग आए, सैनिक लोग मुसलमान, और उन्होंने उस स्थिति का फायदा लेना था, क्या बोले आप चार लोग चोर हो, ये जो दिव्य सुनहरे शरीर का जो व्यक्ति यहां पर बेहोश गिरा है उसको आपने धतूरा खिला के बेहोश कराया है, उसको आप लूटना चाहते हो, लोग आपको ऐसा नहीं करने देंगे, क्योंकि उनको उनको लूटना था, लेकिन वो अपना बल का प्रयोग कर रहे हैं, वो समझा रहे हैं उनको ऐसा नहीं है, उनको बेहोश हो जाते दूसरे की उसमें आ जाती, लेकिन भावना मत बनाओ हम आप सबको अरेस्ट करेंगे। तो राजपूत का राजपूताना जो है ना वो जागरूक हो गया, बोलेगा मैं अभी एक सिटी मारूंगा ना, यहां पर हजारों राजपूत सैनिक आके आपका खात्मा कर देंगे, आप क्या समझते हो अपने आपको। तो वो जो चार पठान आए थे वो भाग गए और 50 लोगों को लेकर आए, अपने मुखिया को भी लेकर आए, तो जब मुखिया आया तो महाप्रभु जी होश में आ गए, महाप्रभु जी ने कहा देखो मुझे मरगी की बीमारी है, एपिलेप्सी, मुझे मरगी की बीमारी है इसलिए मैं बेहोश हो गया था, ये मेरे मित्र लोग हैं तो मुझे लुटने को नहीं आया, वो शांत हो। बाद में महाप्रभु चैतन्य ने उस मुसलमान मुखिया का पठान को प्रचार किया और वहीं पर पठान सरेंडर हो गया, चैतन्य महाप्रभु का शिष्य बन गया और सारे 50 लोगों ने महाप्रभु दीक्षा लिया। अद्भुत कहानी है, जैसे हमारे यहां पर क्या होता है ठंडी होती है, ठंडी गर्मी है यहां पर, जब वो जाती है ना तो अच्छा फटका मार के जाते हैं लोगों को, है ना, आती है तो भी एक फटका मार के थोड़ा सा, लेकिन जाते हैं बस एक बड़ा फटका मार के जाते हैं, मतलब बहुत बीमार होते हैं उससे। लोग कहते हैं कि आपको गर्मी में लग रही होगी ना तो फिर भी होली तक एक कंबल ओढ़ते रहना आप दिन में, आपको लगे नरमी हो रही है, लेकिन ये बहुत विचित्र चीज है। इसलिए होली तक आप एक कंबल ओढ़ के रहना अपने सेहत को बचाने के लिए, क्योंकि जाते जाते ठंडी एक पत्ता मार के जाते हैं। महापुरुष जतन में जाते जाते 50 अंगुल मोती बना गए। इसमें विशेषता यह है कि जो उनको लूटने आए थे, हाँ कोई भावना बनाकर उनको लूटना चाहते थे, उन लोगों को महापुरुष ने अपने प्रेम से मोहित किया। फिर जगन्नाथ से चले गए। महापुरुष की जयंती आ रही है, दो दिन तो गौरांग महाप्रभु की सबसे बड़ी देन हमारे लिए क्या है? जो रासलीला केवल गिने चिने गोपियों के लिए हुआ करती थी, ना यशोदा मैया को प्रवेश है उसके, नंद महाराज को प्रवेश है, ना ग्वाल वालों को है, ना गैयाओं को है, ना मोर को है, किसी भी जीव को प्रवेश नहीं, केवल एक सेक्शन के लोगों को यानी गोपियों को उसमें प्रवेश था। शिव जी आए तो उनको केवल पहले अंदर ले लिया, गोपी बनाकर फिर बाहर कर दिया। गोपी होने के बाद भी उनको बोला बाहर कर दो, रक्षा करो उसकी। लक्ष्मी जी आए उनको मना कर दिया गया, देवता लोग आकाश में आए सबको मना कर दिया गया, और केवल गुप्त रूप में एक ब्रह्मा जी के रात के समय तक एक रात में उन्होंने उसको करके गोपियों को दिव्य आनंद दिया उन्होंने, और फिर ब्रज के कण कण में उन्होंने रास बचाया हुआ है। उसके बाद 7 साल के बाद जो शरद पूर्णिमा का रास हुआ, उसके बाद में कण कण में ब्रज में हर एक जगह पर रासलीला भगवान ने किया है। वसंत में चंद्र सरोवर में किया, वहां पर शुरुआत किया वसंती पूर्णिमा में, लेकिन वो आनंद जो था उन्होंने सीमित रखा, किसी को नहीं दिया उसको, क्योंकि वो आनंद जो है वो एक जीव के लिए भगवान सर्वोच्च आनंद जो प्रकट कर सकते हैं वो आनंद रासलीला है। रासलीला का मतलब है कि जीव और भगवान के बीच में वो परमोच्च आनंद का अनुभूति है जो भगवान अपने भक्त को देते हैं, गोपियों को देते हैं। लेकिन ये कृष्ण लीला का समय है। कृष्ण भगवान जो है बड़े उसका वर्ड मुझे हिंदी में तो मिला नहीं है, इंग्लिश वर्ड है श्रूड लवर है। वो आसानी से किसी को प्रेम नहीं देते। राधा रानी ने रिकमेंड किया तो ठीक है, लेकिन आसानी से उनको प्राप्त करना मुश्किल है। बहुत कठोर काम है उनका प्रेम, उनका ध्यान आकर्षित करना। लेकिन वही कृष्ण भगवान जो इतने लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड अपनी कृष्ण लीला में, वो भी कुछ समय के लिए ब्रज में लीला करते हैं, बाद में तो फिर राजा बन जाते हैं, राजनीति करते हैं, मुरली नहीं बजाते हैं, मोर पंख धारण नहीं करते, नंगे पैर नहीं घूमते, राजवस्त्र लेकर घूमते, द्वारकाधीश बनते हैं, फिर अपना अलग स्टाइल है उनका वहां पर जाने के बाद। इसका मतलब 125 साल की लीला में केवल 11 साल 52 दिन उन्होंने ब्रज में निवास किया, उसमें से भी कुछ कुछ समय पर कुछ कुछ चीजों के लोगों के साथ में उन्होंने रासलीला का अनुभव दिया, और किसी को एंट्री नहीं दिया उसके अंदर। वो रासलीला का जो आनंद है वो गौलोक धाम का प्रेम धन है, वो गौलोक धाम का सार है, एसेंस ऑफ गौलोक धाम वो प्रेम धन है। वो प्रेम धन वो रास के रूप में गोपियों के लिए प्रकट करते हैं गौलोक धाम में, वही प्रेम धन हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से उन्होंने कलयुग में सब लोगों के लिए ओपन कर दिया है। ये उनकी सबसे बड़ी देन है। जो सबसे प्राइवेट धन था, जो किसी के लिए मुमकिन नहीं था, लोगों ने कोशिश करने पर उनको प्रवेश नहीं मिला उसके पास। अरे अभी भी लक्ष्मी देवी वहां पर खड़ी है बेलवन में, तपस्या कर रही है प्रवेश करने के लिए, योग्य बनने के लिए, अभी भी प्रवेश नहीं मिला उसको। वो जो आनंद है जिसको पाने के लिए सब लोग तरसते रहते हैं, हम सर्वात्मस्तपनम परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन, वो आनंद उन्होंने 16 अक्षरी हरे कृष्ण महामंत्र में स्वयं के अस्तूल करके अवृत्त करके उसके अंदर घुसा के आम जनता के लिए प्रकट किया। पात्र अपात्र ना दिखिला ना दिखिला स्थान स्थान, कोई व्यक्ति का योग्यता दिखाने की, योग्य है पापी है नहीं है, पुरुष है स्त्री है, क्या ब्राह्मण का नहीं है, क्या पाप किया हुआ है, ये ना दिखा उन्होंने। और ना दिखिला स्थान स्थान, कोई जगह अच्छी है, कोई पेशा का घर है, दारू का अड्डा है, क्या किसी का घर है, क्या है, किसी को भी ना देखते हुए, किसी चीज का क्या कहते हैं उसको योग्यता ना देखते हुए उन्होंने सब लोगों के लिए हरिनाम संकीर्तन प्रकट किया। और हम सबको पता होना चाहिए कि हरिनाम संकीर्तन साक्षात रासलीला है भगवान की। जो व्यक्ति इस हरिनाम संकीर्तन में यज्ञाय संकीर्तन प्रायर यजंती समय जैसा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है जो समझता है इस बात को और समझकर एकाग्र होकर इस हरिनाम संकीर्तन में भाग लेता है, उसको जो गोपियों को आनंद प्राप्त हुआ था ब्रह्मा जी के एक रात के समय के लिए, वो आपको प्राप्त है इसमें से। दूर से देखेंगे मैंने हाथों पर करूंगा, एक दिन में उसके भी तो बोलना चाहिए, मैं तो फलाना प्रधानमंत्री हूँ, फलाना अधिकारी हूँ, मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, ऐसे रहेंगे प्रेक्षक रूप में तो नहीं आएगा आपका मन। अपना सारा अहंकार, सारा पद का और अपने पोजिशन का और इसका उसका अहंकार जो हम लोग घूमते हैं, उसको छोड़कर जब नम्र होकर हम उसमें प्रवेश करेंगे और भाव विभोर होकर एकाग्र होकर, जैसे ये लोग देख रहे थे महाप्रभु जो करने को, क्या वर्णन आता है, ऐसे मानो आंखें चकोर की आंखें एक तक निहार रहे महाप्रभु को, प्राण से उनके अमृत जैसे हरिनाम को ग्रहण कर रहे हैं, तो उनकी आंखों से आंसू आए, क्योंकि वो महाप्रभु चैतन्य के हरिनाम संकीर्तन में तन मन से लगे हुए थे, सारी इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार उनका जो भी सत्व था वो सब संकीर्तन में उन्होंने अर्पण किया था, इसलिए उनको हमेशा कृष्ण प्रेम के सागर की लहरों में झूमता हुआ आनंद प्राप्त हुआ। और वो आनंद आज भी महाप्रभु चैतन्य के शरीर से ना होने पर भी उनके द्वारा दिए गए इस हरिनाम संकीर्तन की प्रक्रिया से हम सब लोग उसी आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम दिलो जान से उसमें अपने आप को समर्पित करेंगे। जैसे कीर्तन शुरू होता है, अगर हम सारे बटन बंद कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, तो केवल भगवान के कीर्तन में भाग लेंगे, हृदय से प्रेम से भावना से ना संकोच, तो फिर वही आनंद जो गोपियों के द्वारा में प्राप्त हुआ था वैसे आज प्राप्त हो सकता है। कितनी कृपा है उनकी, देखो कितना प्राइवेट धन उन्होंने इस तरह से हम सबके लिए ओपन कर दिया है, फिर भी हमारे हमको रुचि नहीं है। हाँ? क्या कहते हैं वो, नाम नाम अकारी बहुदा युद्ध सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितानंद सरण ने कहा, एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैवम ईदृशमिहा न जनी अनुराग। अगर इतना करने के बाद भी अगर किसी को भगवान के नाम में रुचि नहीं है तो उसके ऐसा दुर्भाग्य और कोई नहीं है, नो अदर मिसफॉर्च्यून बिगर देन दिस मिसफॉर्च्यून, दुर्दैवम। महाप्रभु शायद स्वयं कह रहे हैं, जिन्होंने ये बांटा हुआ है, जिन्होंने लाया हुआ है, वही कह रहे हैं, अगर आपने भाग्य का उदय करना है, दुर्भाग्य का नाश करना है, तो आप लोग हम लोग सब मिलकर उस संकीर्तन में प्रेम से भाग लें, उसी समय हमारे भाग्य का उदय होगा, उसी समय दुर्भाग्य नष्ट होगा और भगवान की कृपा हम पर होगी, उसी समय सब बंधन छोड़कर हम लोग जाने के योग्य होंगे। तो ये दिव्य आनंद जो है वो किसी अवतार ने आज तक लुटाया नहीं है, ये ऐसा भगवान का अवतार है गौरांग महाप्रभु का कि हर एक अवतार में भगवान अपने अपने भक्तों को लेकर आते हैं, मतलब राम भगवान राम भक्त का अपना परिवार को लेकर आते हैं, हनुमान जी बंदर लोग आ जाते हैं, वराहदेव में अपने भक्त लोग को ले आते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का अवतार एक ऐसा एक ही अवतार है जिसमें भगवान के जितने अवतार हुए हैं वो सारे भक्त इसमें आ जाते हैं, यानी कि प्रहलाद जी भी वासुदेव दत्त के रूप में आए हुए हैं। हाँ, अपना योग निद्रा में सोते हुए विष्णु का निर्माण करने का सेवा जो है वो छोड़कर महाविष्णु आए हैं अद्वैत आचार्य बनकर, उनकी सेवा सोते हुए करने की सेवा है, उठ गए मुझे जाना है, मुझे लीव दे, आई वॉन्ट टू टेक लीव, आई डोंट वॉन्ट टू डू माई ड्यूटी फॉर सम टाइम, जाकर महाप्रभु की लीला में भाग लेना है, अद्वैत आचार्य बनकर आए वो। ऐसे सारे लीलाओं के जितने भगवान के भक्त हैं वो सब लोग अलग अलग भेष बदलकर गौरांग महाप्रभु की लीला में समाविष्ट हुए। अरे वो आया कंस, कौन आया कंस, चांद कार्य कर रहा, जरासंध आया दबाव दबाव, ऐसे अद्भुत लोगों का सम्मिलित हो गया सब लोग, और सबको भगवान ने किसी को मारा नहीं, अगर सारे अवतार में भगवान ने राक्षसों को मार दिया है, अवतार में सबका हृदय परिवर्तन कर दिया, सब लोग जितने भी पापी दिखते पापी पापी यथा चलो हरिनाम उद्धार लो, सबको हरिनाम की मदद से उद्धार कर दिया, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने, तो किसी का वध भी नहीं किया, सबका हृदय परिवर्तन किया, ऐसी कृपा ऐसा दयालु अवतार आज तक नहीं हुआ है। यदि गौर न हुई तो तबे की हुई तो क्या मैंने गरी उन्होंने भरी काम दी, राधार महिमा प्रेम रोशो सीमा जगत जाना सके, ऐसे मालूम होता लोगों को कि प्रेम राधा और कृष्ण के बीच में क्या होता है। ये महाप्रभु चैतन्य ने श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा अद्भुत रूप धारण करके सारे दरवाजे खोल दिए, सारे चीज अपने लिए प्रकट कर दिया, ले लो लूट लो, ये मत समझो कि हमारे संप्रदाय में क्या दिया है, उनमें संप्रदाय में ये लीला है कि वो लीला है, अरे सब कुछ है महाप्रभु के संप्रदाय में, आप ले लो आस्वादन, उसका लाभ ले लो, हरिनाम संकीर्तन और किसी भी संप्रदाय में प्रकट नहीं हुआ है, स्वयं हमारे संप्रदाय में भगवान ने चुना है कि गौड़ीय संप्रदाय में, मतलब ब्रह्मबद्ध संप्रदाय में मैं आऊंगा, और हमारे संप्रदाय में उन्होंने अवतार लिया है, और हमारे संप्रदाय के भागीदार होकर उन्होंने ये हरिनाम संकीर्तन, हमारा घर का पड़ोसन नहीं है, हम लोग कहते हैं ना प्रभु जी ये हमारे घर के खेती का रोटी बनाए है ना, हमारे घर का गेहूं है सर। तो आपको अच्छा लगता है ना कि मेहमान के पास जाएंगे बोलेंगे प्रभु जी हमारी खेती का अभी अभी निकाला हुआ गेहूं है, बाजार में मिलता है वो, लेकिन आप जब किसी के घर का गेहूं खाते तो आपको एक आनंद प्राप्त होता है कि नहीं, प्रभु जी ये हमारा जो है ना हरी फ्रूट हमने पीछे बनाया इसको, ये हमारे ऑर्गेनिक हमारे आंगन में बना हुआ फल है, आनंद होता है। वैसे ही ये हरिनाम संकीर्तन हमारे घर की खेती है, ये हमारे घर का प्रोडक्शन है जो हम लोग आस्वादन कर रहे हैं, और यहां से वो सारे संप्रदाय को प्रकट हुआ है, सारे संप्रदाय को प्राप्त हुआ है, योर प्रोडक्शन आपका प्रोडक्शन जो है सब दुनिया के लिए प्रकट किया जा रहा है, कितना भाग्य है हमारा, हाउ फॉर्चुनेट वी आर। लेकिन उस भाग्य को अगर समझना है तो हम सब लोगों को इस हरिनाम संकीर्तन में हृदय से भाग लेना चाहिए बिना संकोच के, सवेरे का जब ध्यान से करना चाहिए, जब कीर्तन होगा तो हृदय से उसमें भाग लेना चाहिए, तो ये महाप्रभु की कृपा बिना रुकावट के आपके ऊपर हावी हो जाएगी और आपका जीवन धन्य करेगी। जय गौरांग महाप्रभु की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्रीमधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। कृष्ण 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 हे, ये कितना माँ प्रभु ने किया था। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षाम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन की, गौरांग महाप्रभु की। तो आइए हम सब लोग तैयार हो जाए, इसी गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव दिन 23 तारीख को आने वाला है, जब चंद्रोदय होगा 23 तारीख को पूर्णिमा के दिन, उसी समय गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए थे जगन्नाथ मिश्रा के आंगन में, नुमाई पेड़ नीम के पेड़ के नीचे उनका आविर्भाव हुआ। आइए सब लोग हम उनको उनका उत्सव मनाए, उनकी भेंट को हृदय से स्वीकार करेंगे। श्री गौरांग महाप्रभु की, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, गौर प्रमाण दे।